गंगा देवी जब भगवान के धाम से नीचे आ रही थी तो पहले ब्रह्मा लोक गई, फिर स्वर्ग लोक जाकर आज के दिन वो पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई है भागीरथी भागीरथ के परिश्रम के उत्तर के रूप में। आज के दिन भगवान के परम मित्र सुदामा जी द्वारका में कृष्ण से मिले अक्षय तृतीया के दिन। आज के दिन सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, बहुत फेमस अक्षय पात्र जानते ना, भगवान आए उसमें से चावल का दाना उन्होंने भोजन किया। आज के दिन व्यास देव जी ने गणेश जी के श्री हस्ते महाभारत का लेखन शुरू किया। सो महाभारत वॉज स्टार्टेड टू बी रिटन टूडे। कुबेर जी को जो भगवान के ट्रेजरर हैं, है ना, तो कुबेर जी को जो भगवान के ट्रेजरर की पोस्ट है वो आज प्राप्त हुई, आज वो पोस्ट पर विराजमान हुए। हरे कृष्ण। फिर भगवान भगवती अन्नपूर्णा देवी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ है। और रथ यात्रा होती है आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में, आषाढ़ के द्वितीया को बहुत भव्य जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है। उस रथ यात्रा का जो रथ है वो आज से बनाना आरंभ किया जाता है। आज से, आज वैशाख तृतीया है, अक्षय तृतीया, आषाढ़ के द्वितीया तक वो रथ पूरा किया जाएगा, लेकिन आज उसका शुभारंभ होगा। और माधवेंद्रपुरी जी को गोपाल जी ने स्वप्न दिया था कि मेरे लिए चंदन लाने के लिए आप जगन्नाथपुरी के आसपास गए हो, चंदन प्राप्ति हो गई है तो इतना चंदन अभी लाने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ पर क्षीर चोर गोपीनाथ जी के रूप में उपस्थित हूँ, तो वो चंदन जो है आप उन्हीं को अर्पण कर देना, मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तो आज के दिन माधवेंद्रपुरी जी ने क्षीर चोर गोपीनाथ जी को चंदन लगाना आरम्भ किया और आज से 21 दिन तक वो चंदन जो है वो भगवान को लगाते हैं, चंदन यात्रा होती है, बहुत सुंदर। आज से ही तुलसी देवी को जलदान आरंभ होता है, 21 दिन के लिए निरंतर बूंद बूंद से मटका लगाकर उनके ऊपर निरंतर उनको 21 दिन तक जलपान किया जाता है। और एक सुंदर कहानी है, आज के दिन नंदगांव में एक सरोवर है, पावन सरोवर, वो नंद महाराज जी का निजी सरोवर है, प्राइवेट पॉन्ड टू टेक बाथ। तो आज के दिन प्रयागराज स्वयं त्रिवेणी संगम, एक देवता है वो स्वयं, वो धाम के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। और सभी बहुत सारी देवियां हैं जो नदी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे गंगा है, सरस्वती है, जमुना जी है, सरयू है, सिंधु है, कावेरी, नर्मदा, भीमा, बहुत सारी नदियां, इंद्रायणी, वो सभी देवियां व्यक्ति रूप में प्रयागराज जी के साथ में आकर नंद महाराज के पावन सरोवर में आज के दिन स्नान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर सब लोग जाकर उनमें स्नान करते हैं, अपने पाप छोड़ते हैं, वो एक दिन अक्षय तृतीया के दिन कैजुअल लीव लेते हैं और अपनी शुद्धि के लिए नंद महाराज के सरोवर में जाकर स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, उस रज में लोटपट होते हैं और फिर अपनी सेवा के लिए 359 दिन चले जाते हैं। ऐसा ही आज का दिन है। ये सब क्यों बता रहे हैं, कभी आगे जाकर कभी वाद विवाद होगा ना, थोड़ा सा थोड़ा बहुत मीठा मीठा वाद विवाद, तो याद रखना कि हमारा विवाह इतने पवित्र दिन में हुआ था तो हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए कि हमारा पवित्र दिन में विवाह हुआ था, बहुत शुभ मंगल समय पर हुआ था। आज के दिन का महात्म्य ऐसा है कि आज के दिन जो भी हम कार्य शुरू करेंगे वो अक्षय खाते में जाएगा। क्षय का मतलब है डिमिनिशिंग, नष्ट होना, अक्षय का मतलब है जो चिरंतन है, जो इटर्नल अकाउंट कहते हैं उसको। जो भी आप आज करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान की विग्रहों की पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, श्लोकों का पठन करेंगे, जो भी आप करेंगे इसका फल जो है वो अक्षय होगा, वो नष्ट नहीं होगा, भगवान के खाते में जमा किया जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में विवाह संस्कार का महत्व समझाना कुछ चंद शब्दों में बहुत आवश्यक है। विवाह संस्कार जो है वो बहुत पवित्र संस्कार है। वैसे 55 संस्कार बताए गए, उसमें 9 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका अर्थ यह है कि साथ में आकर आपको भगवान की सेवा करनी है, साथ में आकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, उसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और एक दूसरे को उत्साह देकर, प्रेरणा देकर, एक दूसरे को भगवान की भक्ति में चालना देकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। गृहस्थ आश्रम का मतलब यह है कि हम खुद आनंद लेने वाले नहीं हैं, भगवान भोगता हैं, हाँ उनके आनंद के लिए, उनके खुशी के लिए हमको साथ में आकर कार्य करना है। हमारा घर जो है कायदे से हमारा नाम उस पर होगा, लेकिन घर के स्वामी भगवान होंगे, उसी को आश्रम कहते हैं। जिस जगह पर भगवान केंद्र स्थान में होते हैं, हम केंद्र स्थान में नहीं होते हैं, उस घर को आश्रम कहते हैं, और जहां पर पति पत्नी एकत्र होकर विवाह संस्कार के बाद रहते हैं उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो हमारे आश्रम को हमको गृहस्थ आश्रम बनाना है, और हमारा आपका जो विवाह है वो इंद्रिय भोग के लिए, खुद के तुष्टि के लिए नहीं है, साथ में आकर भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। आगे जाकर संतान उत्पन्न होगी, बच्चे उत्पन्न होंगे, बालक उत्पन्न होंगे, उन्हें भी भगवान की भक्ति में आपको प्रेरणा देना है और भगवान के रास्ते पर लाना है। ये सब करने के लिए एक दूसरे के लिए आदर होना बहुत आवश्यक है। आदर तब होगा जब आप अपने पत्नी को भगवान की भक्त के रूप में देखेंगे, जब आप अपने पति को भगवान के भक्त के रूप में देखेंगे। पति तो है ही ज़रूर, लेकिन भगवान के भक्त पहले हैं, पति बाद में हैं। भगवान के भक्त पहले हैं, पत्नी बाद में हैं। इस भावना से जब आपके दोनों के संबंध में जब भगवान बीच में रहेंगे तो आपका आदर बना रहेगा, और जब आदरयुक्त संसार आप करेंगे, गृहस्थी करेंगे, तो आपके गृहस्थी जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहेगा। गृहस्थ जीवन के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि दान धर्म, नित्य रूप में गृहस्थ जीवन में हमको ब्राह्मणों को भगवान के लिए उनकी सेवा में दान देना चाहिए। आपके घर में अतिथि आपके घर के अलंकार होंगे, जब वो अतिथि आएंगे, खास करके वैष्णव आएंगे, तो आपकी शोभा बढ़ेगी गृहस्थ आश्रम की। आपके घर में भगवान का विग्रह होगा, जो ऑलरेडी बहुत आतुर हैं आपके घर में आने के लिए, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी, कल उनका स्वागत किया गया, केवल आपके घर में प्रवेश करने के लिए उनका स्वागत किया गया, 56 भोग लगाए गए उनको, तो वो आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपके घर की रौनक बढ़ाएंगे, घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो डीटी वर्षिप, अर्च विग्रह, भगवान की सेवा करना है आपको। और घर में भगवान के उत्सव मनाना है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, और गोवर्धन पूजा है, जैसे बहुत सारे सुंदर उत्सव है वह मनाना है। और वैदिक संस्कृति को आपको उच्च स्थान में रखना है, आपका संस्कृति जो है वो बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है वैदिक संस्कृति, इसी को घर में आपको श्रेष्ठ स्थान पर रखना है। अपने बच्चों को अपने आप के बीच में वो श्रेष्ठ संस्कृति का जो व्यवहार है वो आपको अपनाना है। ऐसे कहा गया है कि आप और हम ना पति बन सकते हैं, ना माता बन सकते हैं, ना जननी यानी कि माता, राजा, गुरु नहीं बन सकते तब तक जब तक हमारे ऊपर जो निर्भर है, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अस, उनको जब तक हम भगवान के भक्ति का रास्ता, मार्ग नहीं दिखाते हैं, उनको प्रेरणा नहीं देते हैं, तब तक हमें माता, पिता, पति, राजा और गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो आज आपको ये वचन आपने लिया है कि भगवान की भक्ति में आप एकनिष्ठ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति भी एकनिष्ठ रहेंगे। तो संक्षेप में, पति का कर्तव्य है कि पत्नी को अन्न, वस्त्र, दीवारा लेकर उसके शरीर की रक्षा करनी है, पत्नी की भावना से भी रक्षा करनी है, और निरंतर आपको एक उदाहरण बन के अपनी पत्नी के सामने उन्हें भक्ति में प्रेरणा देनी है। यह आपका मूल कर्तव्य है। पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति गुरु के रूप में उनको मानकर सेवा करें, क्योंकि पति जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और पत्नी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। उस भावना से उनको देखना है, उनसे एकनिष्ठ रहकर आपको उन्हें अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन कहकर हमेशा उत्साह देना है और भक्ति में उनको प्रेरणा देनी है। ऐसे कहते हैं कि पत्नी जो है वो एक हार्बर की तरह होती है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जैसे समुद्र में जहाज, हाँ, इट्स अ किनारा कह सकते हैं, किनारा। तो जब जहाज होता है ना, वो बोट, वो सब जगह समुद्र में सफर करता है, कभी धक्का खाता है, कभी टूटता है, फूटता है, कभी जख्मी होता है, ये आता किधर है, बाद में किनारे पे आता है। किनारे में क्या होता है, किनारे में उसकी मरम्मत होती है, उसकी डगडूजी होती है, उसका पोषण होता है, फिर सक्षम बनाया जाता है उसको, और फिर वो समुद्र में सैर करने के लिए वापस जाता है। उसी तरह से आप बाहर जाएंगे, कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, कभी कुछ बुरे अच्छे अनुभव आएंगे, घर में आएंगे पत्नी के पास, तो पत्नी आपको सहारा देगी, उत्साह देगी, आपका पोषण करेगी, आपको अच्छे मीठे वचन बोलकर आपका हौसला बढ़ाएगी। तो ये पत्नी का कर्तव्य है। साथ साथ में आपको ये वचन लेना है कि आपके गृहस्थी के रूप में जो इनके गर्भ में आत्मा प्रवेश करेगी वो कभी भी दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये गर्भ आखिरी गर्भ होगा और इस जन्म के अंत में वो भगवत धाम में पधारेंगे, मतलब वो भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान का दिव्य धाम प्राप्त करेंगे। दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने के लिए वो जीव नहीं आएगा। ये आपको दोनों को निर्णय लेना है, एक साथ बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, गुरु और वैष्णवों के सामने बैठकर ये वचन लेना है कि हम ऐसे करेंगे। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि आप जब आए तो बारात लेकर आए ना, आप कितने लोग थे बारात में आपके, कम से कम 100-150 लोग थे ना। लेकिन लड़की जब शादी करके जाती है तो वो अकेले जाती है अपने ससुराल, उनको अपने पति के साथ में एडजस्ट करना है, सासों के साथ में एडजस्ट करना है, ससुर के साथ में करना है, देवर के साथ करना है, जेठानी के साथ करना है, पूरे परिवार के साथ में एडजस्ट करना है, नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो इसलिए इस सत्य परिस्थिति को देखते हुए आपको उनकी भावना से बहुत देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके सामने बहुत चैलेंजेस हैं। सभी अलग अलग लोगों से उनको एडजस्ट करना है, भगवान की भक्ति बरकरार रखनी है और गृहस्थी में सबको आनंद देना है। जब बहू आती है तो उम्मीद रखते हैं कि सब लोग खुश हो जाएंगे, सासू ससुर जी देवरानी सब लोग खुश हो जाएंगे। तो इनके इस नए चैलेंज में, द चैलेंज ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें आप उनको आप सहायता करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित जितने भक्तजन बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, आपके माता पिता, इनके माता पिता, सब प्रेमीजन भक्तजन कीर्तन कर रहे हैं, इन सब की ओर से मैं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, ललिता विशाखा जी, गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, परम गुरुदेव एसी भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद जी और सभी वैष्णवों के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये गृहस्थी बहुत ही आनंदमय बने, सुख शांति वाली बने, समृद्धि वाली बने, आपके संतान भगवत भक्ति में परायण हो और आपका गृहस्थी जीवन भगवान केंद्र स्थान में रखते हुए सफल हो। लेट इट बी सक्सेसफुल, ग्लोरियस एंड पाथवे बैक टू गॉड हेड, ये मैं आपके लिए आज शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।